نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم قرآنی صورتوں کا نظم جلی اس میں سے ہم مختصر اصول تفسیر پڑھ رہے ہیں پیج 27 پہ آج ہم کنٹینیو کریں گے صورتوں کے نزول کے بارے میں جو پیچھے سے ہم پڑھ رہے تھے کہ کون سی صورت کس دور میں نازل ہوئی ٹھیک ہے تو آج ہم پڑھیں گے 6 سے 10 نبوی میں نازل ہونے والی صورتیں اس سے پیچھے ہم دو حصے پڑھ چکے ہیں کون سے نبوت کے شروع سے لے کر 5 سال تک کا جو عرصہ تھا اس میں نازل ہونے والی صورتیں ٹھیک ہے تو آج ہم 6 سے اوپر یعنی گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب مکی دور کا آخری دور جو 4 سالہ محیط ہے 4 سالہ دور پہ اس میں کیا ہوا تھا یہ دیکھتے ہیں تیسرے دور کس چیز کا تیسرا دور مکہ کا یعنی تیسرے دور میں غالباً کل 22 صورتیں نازل ہوئیں ابتدا میں قحط کے بعد 9 صورتیں اور شدت ظلم کے بعد 13 صورتیں نازل ہوئیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے اس دور کے آغاز میں حضرت حمزہ مسلمان ہوئے ان کے 3 دن کے بعد حضرت عمر اسلام لے آئے یہ واقعہ غالباً ذوالحجہ 690 بمطابق 615 عیسوی کا ہے اب آپ دیکھیے اس کو دہراؤں کل کتنی صورتیں نازل ہوئیں ان 4 سالوں میں 22 ابتدا میں قحط کے بعد 9 اور شدت ظلم کے بعد 13 ٹھیک ہے اور تفصیل ہے اور اس دور کے آغاز میں کون مسلمان ہوتا ہے حمزہ اور 3 دن بعد عمر اگر آپ یہ ساری باتیں ادھر جس طرح یہ بنے ہوئے ہیں نا فلو چارٹس اس طرح سائڈ پہ لکھ لیا کرے میری عادت ہوتی تھی جب میں پڑھتی تھی کبھی کہ کتاب کے یہ جو خالی سے نہیں ہوتے ادھر ادھر یا جیسے بارڈر آپ کو دکھ رہے ہیں تو اس ساری کی چیزیں لکھوں گی کل 22 سمجھ جاؤں گی میں کیا 9 قحط کے بعد تیسری لائن پہ لکھوں گی 13 شدت ظلم میں پھر نیچے لکھوں گی حمزہ مسلمان 3 دن بعد عمر مسلمان یہ واقعہ 690 یعنی یہ پورے جملوں کو ورڈز میں بلٹس میں لکھ لیتی تھی تو جب بھی پھر پڑھاؤ تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آنکھوں کے سامنے آتی ہیں تو آپ کو بہت لمبا پڑھنا نہیں پڑتا بلکہ دیکھ کے سمجھ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں 790 کے قحط کے بعد نازل ہونے والی کون سی صورتیں تھیں 790 616 عیسوی میں مکہ میں قحط پڑا اس دور میں نازل ہونے والی 9 صورتیں حسب ذیل ہیں اب آپ دیکھیے جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں فوراً آئے گا نا حالات کیا تھے تنگی ترشی قحط پڑا ابتری ہے تو صورتوں کا مضمون بھی پھر ویسے ہی ہوگا نا تو کون سی صورتیں سورۃ انبیاء جو ترتیب میں آج 21 نمبر پہ ہے یہ اس دور میں نازل ہوئی تھی رسول اللہ پر شاعر اور مفتون ہونے کا الزام کہتے تھے آپ کے اوپر جادو ہو گیا یا آپ شاعر ہیں مومنون جو آج 23 نمبر کی صورت ہے یہ نازل ہوئی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مجنون ہونے کا الزام 25 نمبر صورت فرقان رسول اللہ پر مسخور اور مفتری ہونے کا الزام 26 صورت شورا ہے تشکیق شک ڈالنا اور رسول اللہ پر مجنون ہونے کا الزام صورت نمل 27 صورت ہے تشکیق اور رسول اللہ پر ساحر ہونے کا الزام 28 صورت القصص ابو طالب کی ہدایت یعنی ان کو ہدایت دینا رسول اللہ کے اختیار میں نہیں اور 44 نمبر کی صورت حامیم دوہان رسول اللہ پر مجنون اور معلم ہونے کا الزام اور 45 نمبر کی صورت حامیم جاسیہ دہریت میں گرفتار مادہ پرست لیڈروں کو دھمکی اور آیت 54 صورت القمر دور تکذیب میں نازل ہوئی میں اشاروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگنے والے الزامات کو دیکھ رہی تھی ذرا گنی ہے رسول اللہ پر شاعر مفتون مجنون مسحور مفتری تشکیق اور اسی طرح مجنون ہونے کا اور تشکیق اور آپ پر ساحر کا الزام کون سا الزام رہ گیا پیچھے ہم کہتے لوگ ہمیں پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں کل بھی ایک سسٹر سے بات ہو رہی تھی کہتی جب ہم ماڈرن ہوتے ہیں جب ہم بہت لوگوں میں رہتے ہیں تب تو لوگ ہمیں بہت پسند کرتے ہیں قرآن ابھی پڑھنے بیٹھے ہیں ابھی کسی کو کچھ کہا بھی نہیں نئی اسٹوڈنٹ ہے بالکل شروع کے پاروں میں کہتی ہے ابھی صرف پڑھنا شروع کیا ہے تو دوستوں کی نظریں کیوں بدل گئی ہیں لوگ تنی کیوں کترانے لگے ہیں تو میں نے کہا کہ نبیوں کا راستہ پڑھ لے جا کہ ایسا ہی ہوتا ہے حق بات کی طرف آتے ہی سب سے پہلے لوگوں کی نظریں ہٹ جاتی ہیں اور یہ بڑا اللہ کا کرم ہے ہم پہ ہٹتی ہیں ورنہ ہم حق کی طرف رہے نہ جن کی نظریں انہیں پہ رہتی ہیں وہ بھی پلٹ بھی جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہم سے یہ قربانیاں نہیں دی جاتی بہرحال इतने इल्जाम आपने सहे, हम होते तो सहते, खुद से पूछिए। हम तो छोटी सी बात पर कहते नहीं, ये पकड़ो मेरा दुपट्टा, मैं नहीं बातें सुन सकती, ये पकड़े मैं नहीं ये कर सकती, मेरे से इतनी बातें नहीं सुनी जाती, मैं रिश्तेदारों को नाराज नहीं कर सकती। बिलीव मी, एक वक्त आता है कि आपका दिल करता है लोग कहें आपको और आप इंजॉय करें, कहते रहो मुझे क्या, मैं कौन सा सुन रही हूँ, मुझे कौन सा असर हो रहा है तुम्हारी बात का। ये कैफियत आ जाए जब, तो फिर समझे कि आपके अंदर अल हुब्बु फिल्ला वल बुग्ज़ु फिल्ला के असरात आ रहे हैं। फिर इसके बाद असीरी के 3 साल, असीरी किसको कहते हैं, कैद कर देना। ये वही दौर है जिसमें कुरैश मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाब अबी तालिब में मकसूर कर दिया। मकसूर क्या है, हसरा से मफूल का बदन, यानी घेर दिया गया। ये वाक्य मुहर्रम 7 नबी मुताबिक 616 ईस्वी का है। 3 साल तक आपको नजर बंद किया गया और इस जमाने का इख्तिताम मुहर्रम 10 नबी मुताबिक 619 में हुआ। दौरे शिद्दत जुल्मो सितम में नाजिल होने वाली सूरतें, दौरे जुल्मो सितम में गालिबन 11 सूरतें नाजिल हुई जिनकी तफसील हस्बे ज़ैल है। ये वो दौर था जिसमें इल्जामात भी थे, लेकिन बात इल्जामात से बढ़कर आपके खिलाफ साजिशों तक पहुंच गई। देखिए शुरू में लोग इल्जाम लगाते हैं, फिर बाद में साजिशें करने लगते हैं। इस दौर के आखिर में हवामीम की 2 सूरतें नाजिल हुई। कौन थी सूरतें थी, 11। इसमें सबसे पहले सूरत सबा जो 34 नंबर की सूरत है, रसूलुल्लाह पर साहिर मजनून और मुफ्तरी होने का इल्ज़ाम। सूरत फातिर जो आज 35 नंबर की सूरत दिखती है हमें कुरान पाक में, ये नाजिल हुई, इसका मजमून रसूलुल्लाह के खिलाफ साजिशें। फिर सूरत यासीन जो 36 नंबर की सूरत है, रसूलुल्लाह पर शायरी का इल्ज़ाम और अल्लाह का जलाल। क्या आप सूरतों के नंबर याद कर सकते हैं, किस किस को आते हैं? मैं जब शादी के बाद अमेरिका गई तो मेरे लिए एक नई चीज़ों में ये भी चीज़ थी कि सूरतों के नंबर भी होते हैं और वो याद किए जाते हैं। पाकिस्तान में हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो जैसे मुझे आज भी याद है कि सूरत अल-कहफ का नंबर 18 है, ये मुझे शादी के बाद मैंने सुना और फिर मुझे याद हो गई बात। सूरतों की तरतीब याद करनी चाहिए, फ़ायदा अगर आप हिफ्ज करते हैं 30वां पारा, बाद गलती लग जाती है। तो सूरतों की तरतीब याद हो तो अगली सूरत याद आती है, और एक गलती खाएंगे तो आप पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। जी अक्सर रेफरेंसेस जो लिखे होते हैं इंग्लिश बुक्स में, उसमें सिर्फ सूरत का नंबर और आयत का नंबर होता है, ठीक है, कर ले याद फिर। नहीं वो तो 12 में है ना, सूरत का नंबर वो 18 है, 18th नंबर है सूरत का नंबर।
सूरत नंबर 2 है ना जो हम पढ़ रहे हैं,
सूरत बकरा 2 है, सूरत आल इमरान 3 है, 4 होगी ऐसे, ठीक है। तो ये जो अभी इस वक्त आप देख रहे हैं, तो इधर साइड पे जो नंबर लिखे हैं ये वो तरतीब है जिसमें आज कुरान पाक में है, ठीक है। आखिर नहीं वो बस 10 को याद है, आगे 104 को नहीं याद जी। तो सूरत सफात में रसूलुल्लाह पर साहिर और मजनू होने का इल्ज़ाम लगा। सूरत सवात में नबी सल्लम पर साहिर और कज़ाब होने का इल्ज़ाम लगा। सूरत अलबरूज जुल्म और सितम पर हलाकत की धमकी। सूरत तारिक कैद यानी साजिश के दौर में नाजिल हुई। सूरत अलफजर इन्ना रब्बक लबिल मिरसाद हलाकत की धमकी है। सूरत अलबलद जब रसूलुल्लाह पर जुल्म हलाल कर लिया गया। सूरत हामीम अलमोमिन फिरौन की हलाकत से तख़वीफ़ है। सूरत हामीम सजदा आद समूद की हलाकत से तहवीफ़ है। इस दौर का अख्ताम रसूलुल्लाह की रहाई अबू तालिब और हज़रत खदीजा के इंतकाल पर होता है, जिसके बाद आपने हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह फरमाया और दावत व तबलीग के लिए ताइफ़ का सफ़र किया। यानी यहाँ से आप देखिए कि मक्की दौर का बिल्कुल आखिरी दौर अब चलने लग गया। फिर इसके बाद देखिए इंतकाल अबू तालिब रजब 10 नबी बमुताबिक 619 में हुआ। हज़रत खदीजा का इंतकाल रमज़ान 10 नबी में हुआ, 2 माह बाद, यानी अल्लाह ने एक से दूसरे सदमे पे आपको डाल दिया। फिर हज़रत सौदा से निकाह शवाल 10 नबी बमुताबिक 619 में हुआ। अब ज़रा देखिए रमज़ान के बाद शवाल आता है, खदीजा से कितने साल का ताल्लुक़ था, 25 साल की उम्र में शादी हुई, 40 साल में नबूवत मिली, 10 साल ऊपर थे, 25 साल का ताल्लुक था। और नबी सल्लम ने अगले माह शादी की सौदा से। आज हमारे होते कहते एक साल तो ज़रा खाली जा जाते, बैठ ही जाते। यानी हमारे कल्चर में एक मर्द का दूसरी शादी करना पहली बीवी के फौत होने के बाद भी, ये भी एक जुर्म है। बाज़ दफ़ा तो ये जुर्म इतना शदीद लगता है, ऐसे लगता है कि पहली बीवी को मारा भी इसने ही है कि तू पुरानी होगी अब तू जा, अब मुझे नहीं चाहिए। ये इन जहालत की बातें हैं हमारे कल्चर में। बहरहाल ये एक आपको नुक्ता दे रही थी कि रमजान में हदीजा का इंतकाल है तो शवाल में हजरत सौदा से निकाह होता है। फिर सफरे ताइफ हुआ शवाल 10 नबवी मुताबिक जून 619 619 ईस्वी में रसूलुल्लाह ने ताइफ का तबलीगी दौरा किया। इसी मौके पे गालिबन सूरत अल अहकाफ और सूरत अल जिन का नजूल हुआ। सूरत अल अहकाफ जिन्नात को कुरान सुनाया जाता है और सूरत जिन जिन्नात कुरान सुनकर मुसलमान दाई बन जाते हैं। तो ये थी वो सूरतें जो के कब नाजिल हुई, मक्की दौर के आखिरी दौर से पहला दौर कह लीजिए, बल्कि अगर अगले में देखें ना कि आखिरी 3 सालों में जो नाजिल हुई थी वो आगे और आ रही हैं। आखिरी और चौथे दौर के अहम चंद अहम वाक़यात पर निगाह डालते हैं। हज़रत आयशा से निकाह शवाल 11 नबवी मुताबिक 620 ईस्वी में हुआ। रुख्सती हिजरत मदीना के बाद हुई। फिर मदीने से कबीला खजरज के 6 अफराद की मक्का आमद और कबूल इस्लाम ज़िलहज्जा 11 नबवी मुताबिक 620 ईस्वी में। फिर वाक़े मेराज और फर्जियत नमाज पंजगाना 27 रजब 12 नबवी मुताबिक 621 ईस्वी को मेराज हुई। वाक़े मेराज के बाद अब ये जो बात लिखी है ना मेराज अली, इसके अंदर डाउट है, 6 मुख्तलिफ अकवाल हैं जिनमें से एक ये भी है। ठीक है, वाक़े मेराज के बाद सूरत नजम का कुछ हिस्सा और सूरत बनी इसराइल नाजिल हुई। फिर पहली बैते अकबा 12 अफराद की मदीना से आमद और कबूल इस्लाम जिनमें से 10 कबीला खजरज से थे और 2 कबीला औस से थे। और खजरज अमीर कबीला था कि औस, खजरज अमीर कबीला था, अब्दुल्ला बिन उबई भी इसी से ताल्लुक रखता था। यानी बड़े लोगों में से अल्लाह ने चंद लोगों को रखा जिन्होंने फिर जाके वहां दूसरों को बताया। फिर इसी तरह से जुलहज्जा 12 नबी मुताबिक 621 हिजरी में ये हुआ। दूसरी बैते अकबा 72 यानी 72 अफराद की आमद और कबूल इस्लाम जुलहज्जा 13 नबी मुताबिक 622 हिजरी। पहली में कितने आए? 12। दूसरी में कितने आए? 72। 100 नहीं, 72। कहाँ से इतने बढ़ गए? अल्लाह के नबी तो अभी मक्का में बैठे हुए हैं, उन चंद लोगों की कोशिशों से जो मदीना में जाकर फिर इस पैगाम को फैलाने में मददगार हो गए। ये है असल बात। अल्लाह अपने नबी को वहां भेजने से पहले वहां ग्राउंड प्रिपेयर कर रहा था। और याद रखिए, जहां पहले से कुछ कुर्बानियां देने वाले लोग तैयार ना हो, वहां कोई चला भी जाए तो उसे फायदा कोई नहीं होता। तो ये उन लोगों को खिराज तहसीन है जिन्होंने मदीना में इस्लाम का पौधा लगाया। फिर इसके बाद देखिए, आखिरी और चौथे दौर में गालिबन कुल 13 सूरतें नाजिल हुई, जिनकी तफसील क्या है? सूरत यूनुस, हूद, यूसुफ, फर्रात, इब्राहिम, अल हिजर और नहल। इन सारी सूरतों में आप देखिए टॉपिक क्या है। यूनुस जो थी तशकीक और इल्ज़ामात सहर और इफ्तरा में नाजिल हुई, यानी इसमें अल्लाह के नबी पर ये इल्ज़ाम थे। सूरत हूद तशकीक और इल्ज़ामात सहर और इफ्तरा में नाजिल हुई। सूरत यूसुफ रसूलुल्लाह के खराज के मंसूबे हो रहे थे। सूरत अर्रात रसूलुल्लाह के खिलाफ मकर और साजिशें हो रही थी। सूरत इब्राहिम रसूलुल्लाह के खिलाफ मकर और साजिशें हो रही थी। अल हिजर इल्ज़ामात सहर और इस्तेहज़ा के माहौल में नाजिल हुई। और नहल हिजरत मदीना का पेशगी इशारा थी। 12 नबी में मेराज हुई। इस साल गालिबन 2 सूरतें नाजिल हुई जिनमें सफरे मेराज का तज़किरा मिलता है। सूरत बनी इसराइल में रसूलुल्लाह को हिजरत की दुआ सिखाई गई, याद है किसी को? रब्बी अदखिलनी मुदखला सिदकिन व अखरिजनी मुखरजा सिदकिन व जअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। कैसी अल्लाह ने कबूल की, जो बहारे मदीना में आने के बाद इस्लाम ने देखी वो 13 साल में तो मक्का में नहीं देखी थी। तो दुआएं मांगनी चाहिए जब भी ऐसे काम करें। फिर मेराज के मौके पर मक्के और फलस्तीन के सफर के दौरान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा दिखाया गया। मकसद था ना दिखाने का कि अब इधर जाना है। फिर इसी तरह सूरह बनी इसराइल नाजिल हुई। मदीना में इस्लामी रियासत के क्याम के इशारे हैं उसमें। सूरह नजम में वाकया मेराज है। 13 नबी में हिजरत मदीना से पहले गालिबन 4 सूरतें नाजिल हुई। कौन सी? हामीम शूरा जिसमें इस्लामी इज्तमाईत की वजाहत है। हामीम अज़ुहरा कुरैश के खिलाफ इतमाम हुज्जत और आखिरी वार्निंग है। सूरत अल अनाम कुरैश के खिलाफ इतमाम हुज्जत और आखिरी वार्निंग है। और सूरत अल अराफ कुरैश के खिलाफ इतमाम हुज्जत और आखिरी वार्निंग है। तो गोया के मक्की दौर की सूरतें पूरी हुई। مدینہ کی طرف ہجرت کب ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ 27 صفر 14 نبوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے. تو یہ تھی مکی صورتوں کی ڈیٹیل. کتنی ہے ٹوٹل؟ 86. ٹوٹل کتنی ہے؟ 114. 114 میں سے 24 ہے مدینہ میں, پیچھے کتنی رہ گئی؟ 90. 86. جو میں نے کہہ دیا آپ نے وہی بول دیا. ہاں شروع میں پڑھا تھا آپ نے, جمع کر لی تھی 86 کو 24 سے. ابھی آپ کا حساب پتا. اب اگلے حصے میں ہم مدینی صورتوں کو پڑھیں گے, لیکن یہ صورتیں جو مکہ میں نازل ہوئی یہ زیادہ تھیں, طویل تھیں. مدنی صورتوں میں ہر صورت کا ایک اپنا ہی مزاج ہے, ایک اپنا ہی مقام ہے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس سارے علم کو جذب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.